लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रत्यल्लितुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओं, फ्रत्यल्लितुत्ती के आठवें अध्याय धर्म विश्व में भ्रातृत्व की सेवा हेतु है हम चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले प्रसारण के अंत में हमने कहा कि विश्वासियों के रूप में हमारी चुनौती अपने जड़ों की ओर लौटने की है, जिससे हम आवश्यक चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, जैसे कि ईश्वर की आराधना करना और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी शिक्षा संदर्भहीन हो जाती है, जहां हम अपने लिए घृणा, तिरस्कार, अपरिचितों से भय या दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव से भरने लगते हैं। हमारे लिए सच्चाई यही है कि कोई भी मूलभूत धर्म में हिंसा की बातें नहीं है। हिंसा केवल उसके विकृत रूप में उभर कर आती है। श्रोताओ, सच्ची निष्ठा और नम्रता में ईश्वर की आराधना करना हममें भेदभाव के फल उत्पन्न नहीं करता है या हममें घृणा और हिंसा नहीं, बल्कि जीवन की पवित्रता का सामना करने, दूसरों का आदर और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने को प्रेरित करता है, जहां हम प्रेम में अपने को जन कल्याण हेतु समर्पित करते हैं। सचमुच में जो प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यही कारण है कि आतंकवाद निंदनीय है और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा, चाहे वह पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में क्यों ना हो, यह लोगों में भय, आतंक और निराशा प्रसारित करता है। लेकिन यह धर्म के कारण नहीं होता है, यद्यपि आतंकी इसे धर्म के नाम पर साधन बनाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि धर्म की बातों को गलत रूप में परिभाषित किया जाता है और उसे राजनीतिक रूप देते हुए भूख, गरीबी, अन्याय, प्रताड़ना और घमंड से जोड़ा जाता है। अतः यह हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है कि हम आतंकवाद का वित्त पोषण, हथियारों और राजनीति के प्रावधान और इन आंदोलन को सही ठहराने के प्रयासों, यहाँ तक कि मीडिया का उपयोग करते हुए उनका समर्थन करना बंद करें। हमें इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के रूप में देखने की आवश्यकता है, जो सुरक्षा और विश्व शांति को भंग करते हैं। आतंकवाद के ऐसे रूपों की घोर निंदा करने की आवश्यकता है। मानव जीवन के पवित्र अर्थ के बारे में धार्मिक विश्वास हमारी सामान्य मानवता के मूलभूत मूल्यों को पहचानने की अनुमति देती है, जिन मूल्यों के नाम पर हम सहयोग, निर्माण और संवाद, क्षमा और विकास करते हैं। यह अलग अलग आवाजों को एकता में पिरोते हुए नफरत की कट्टरता बोने के बदले उत्कृष्ट, कुलीन और सुंदरता का राग बनाने में हमें मदद करता है। श्रोताओं, कभी कभी कट्टरपंथी हिंसा कुछ समूहों में, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उनके नेताओं के उत्तालवेपन से फैलती है। यद्यपि शांति का नियम धार्मिक रिवाजों की गहराई में अंकित है, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, एक धार्मिक नेता के रूप में हमें चाहिए कि हम सच्ची वार्ता के प्रतिनिधि बने, जिससे शांति की व्यवस्था बिचौलियों के रूप में नहीं बल्कि सच्चे मध्यस्थों के रूप में स्थापित की जा सके। बिचौलियों के संबंध में यदि हम देखें तो वे सबों को एक तरह से छूट प्रदान करते हैं। इसका अंतिम उद्देश्य यही होता है कि उन्हें अपने लिए कुछ लाभ मिले। मध्यस्थ वही दूसरों की ओर अपने लिए कुछ की चाह नहीं रखता बल्कि अपने को पूर्ण रूपेण उदारता में समर्पित करता है, इस बात की चाह करते हुए कि उसके कार्य के परिणाम स्वरूप शांति कायम हो सके। हम में से प्रत्येक जन शांति के शिल्पकार बनने हेतु बुलाए गए हैं, एकता की स्थापना करते हुए न कि विभाजन लाते हुए। घृणा में बने रहने के बदले अपने बीच से घृणा दूर करते हुए हम वार्ता हेतु मार्ग खुला करते हुए इसे पूरा करते हैं, न कि दीवारों का निर्माण करते हुए। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ग्रैंड इमाम अल तैयब से अपने भ्रातृत्वपूर्ण मिलन की चर्चा करते हुए आनंदित होते हैं। हमने इस बात की घोषणा की कि धर्मों को कभी युद्ध के लिए उकसाना नहीं चाहिए, घृणा भरे मनोभावों, दुश्मनी, उग्रवाद और न ही हिंसा या खून खराबे के लिए लोगों को भड़काना चाहिए। ये सभी चीजों के दुष्परिणाम हमें धार्मिक शिक्षाओं से दूर कर देती है। इन सारी बातों की उत्पत्ति धर्म के राजनीतिक उपयोग और अतीत में धार्मिक समूहों के द्वारा उनके अर्थ को गलत रूप में परिभाषित करने से होता है। कई बार लोगों के हृदय में व्याप्त धार्मिक मनोभावों का उपयोग गलत फायदा उठाने हेतु किया जाता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर यह नहीं चाहते कि कोई उनके नाम की रक्षा करे, न ही वे यह चाहते हैं कि हम उनके नाम को लेकर लोगों को भयभीत करें। यही कारण है कि मैं यहाँ शांति, न्याय और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने हेतु लोगों से पुनः अपील करता हूँ, जिस पर हमने मिलकर जोर दिया है। ईश्वर के नाम में जिन्होंने सारी मानवता को एक समान अधिकार, कर्तव्य और सम्मान में बनाया है, जिन्होंने सबों को भाई बहनों की तरह जीवन यापन करने हेतु आह्वान किया है, जहाँ उन्होंने पूरी पृथ्वी को अच्छाई के मूल्यों, प्रेम और शांति से भर देने की जिम्मेदारी सौंपी है। निर्दोष लोगों के जीवन के नाम पर ईश्वर ने किसी की हत्या करने की मनाही की है, इस बात पर जोर देते हुए कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो वह सारी मानवता की हत्या करता है, और यदि कोई किसी के जीवन की रक्षा करता तो वह सारी मानवता की रक्षा करता है। गरीबों के नाम पर जो परित्यक्त हाशिए पर जीवन यापन करते हैं, जिन्हें मदद की अति आवश्यकता है, जिनकी सेवा करने का कर्तव्य ईश्वर ने हमें सौंपा है, विशेषकर जो लोग धनी हैं और जिनके पास संसाधन हैं, अनाथों, विधवाओं, शरणार्थियों और वे जो अपने घरों और देशों से निर्वासित कर दिए गए हैं, उन लोगों के नाम पर जो युद्ध, प्रताड़ना और अन्याय के शिकार हैं, कमजोरों के नाम पर जो भय में जीवन यापन करते हैं, युद्ध के कैदियों और वे जिन्हें विश्व के कई स्थानों पर यंत्रणाएं दी जाती हैं, उन लोगों के नाम पर जिन्होंने अपनी सुरक्षा, चिंता और एक साथ रहने की संभावनाओं को खो दिया है, जो विनाश, प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों के शिकार हैं, मानव भ्रातृत्व के नाम पर जो विश्व के सारे लोगों का आलिंगन करता है, उन्हें एकता के सूत्र में पिरोता और समानता प्रदान करता है, इस भ्रातृत्व के नाम पर जो अपने में आतंकवाद के कारण खंडित और विभाजित है, अनियंत्रित लाभ की व्यवस्था या घृणापूर्ण वैचारिक प्रवृत्तियों द्वारा जो पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और भविष्य के संबंध में हेराफेरी करते हैं, स्वतंत्रता के नाम पर जिसे ईश्वर ने सभी मानव प्राणी को प्रदान किया है, उन्हें स्वतंत्र बनाया और इस उपहार के द्वारा उन्हें अलग किया है, न्याय और दया के नाम पर जो समृद्धि की नींव और विश्वास की आधारशिला है, दुनिया के हर भूभाग में मौजूद सभी व्यक्तियों की सद्भावना के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और अब तक कही गई हर बात के लिए हम संवाद की संस्कृति, आचार संहिता के रूप में आपसी सहयोग, विधि और मानक के रूप में पारस्परिक समझ को अपनाने की घोषणा करते हैं। श्रोताओं, हमने संत पापा के विश्व प्रेरित पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
देर से आए पास तुम्हारे, जब खुद से घबराए तो दुख भी उठाए, दुनिया भर के आखिर को पछताए तो। देर से आए पास तुम्हारे, जब खुद से घबराए तो दुख भी उठाए, दुनिया भर आखिर को पछताए तो। देर से आए पास तुम्हारे, जब खुद से घबराए तो।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 31 अगस्त के ट्वीट संदेश में कहा, आज हमें भविष्यवाणी की जरूरत है, सच्ची भविष्यवाणी की, चमत्कारी प्रदर्शनों की नहीं, बल्कि ऐसे जीवन की जरूरत है जो ईश्वर के प्रेम के चमत्कार को प्रकट करते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 30 अगस्त को कार्डिनल मार्चेलो सेमेरारो के नेतृत्व में परमधम पीठ संत प्रकरण परिषद द्वारा संत एवं धन्य घोषणा के लिए प्रस्तावित अज्ञापनों को अनुमोदन दिया। उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं: ईश सेवक प्लाचिदो कोर्ते से एक धर्म सामाजिक पुरोहित थे। उनका जन्म 7 मार्च 1907 को क्रोएशिया में हुआ था और निधन नवम्बर 1944 को इटली में हुआ। ईश सेविका मरिया क्रिस्टीना सेल्ला मोसेलिन एक लोक धर्मी थी और परिवार की माता थी। उनका जन्म 18 अगस्त 1969 को इटली में हुआ था और निधन 22 अक्टूबर 1965 को इटली के बासानो दिल ग्रापा में हुआ। और ईश सेविका एनरिका बेल्ट्रामे क्वात्रो की एक लोक धर्मी थी, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1914 को इटली के रोम में हुआ था और निधन 16 जून 2012 को हुआ। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने इटली के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले धर्मदर्शकों की सभा को अपना संदेश भेजते हुए उनसे अपील की है कि उनका प्रेरित कार्य उदारता एवं आशा से पूर्ण हो। बेनवेंटो शहर में करीब 20 इतारी धर्मदर्श 2 दिवसीय सभा में भाग ले रहे हैं ताकि वे अपनी प्रेरितिक देखभाल को जनसंख्या ह्रास, आशय पर जीवन यापन करने और आर्थिक कठिनाई झेलने वाले लोगों के बीच पुनः जागृत कर सकें। सोमवार को जब बैठक की शुरुआत हुई तब संत पापा फ्रांसिस ने सभा के प्रतिभागियों को संदेश भेजा तथा आग्रह किया कि वे सारी चीजों को नवीन बनाने हेतु खुलेपन के साथ आगे बढ़ें। संत पापा ने कहा कि सभा धर्मदर्शकों को समन्वय और बंधुत्व की खोज करने एवं चुनौतियों का सामना एक साथ करने में मदद देगा। उन्होंने कहा, अपने आप को कठिनाइयों, व्यक्तिवाद और उदासीनता से लकवाग्रस्त होने ना दें, जो इस समय की विशेषता है, बल्कि ख्रिस्तियों को इन समस्याओं का सामना उदारता और सक्रिय सहभागिता तथा आज के समाज में मूल्यों की कमी के साथ असहमति जताते हुए करना चाहिए। उन्होंने इताली धर्मदर्शकों से अपील की है कि वे अतीत के लिए विषाद से ऊपर उठें एवं उन जगहों पर एक सांत्वना देने वाली उपस्थिति बनने हेतु साहसिक कदम उठाएं जहां कठिनाइयां बहुत अधिक हैं। उन्होंने कहा, पल्ले ख्रिस्त जीवन के लिए प्रशिक्षण केंद्र तथा दूसरों के लिए सेवा का स्कूल बने, इस तरफ वे नम्रता और कोमलता चमकेगा। संत पापा ने अपने संदेश के अंत में पहल के लिए सराहना व्यक्त की जो धर्मदर्शकों को योजना एवं मनोभाव बनाने में मदद करेगा। ताकि लोग यीशु से मुलाकात करने के प्रेम को पा सकेंगे। सृष्टि की देखभाल को मनाया जाना अधिक आवश्यक है जब हम इस कठिन समय में जी रहे हैं। उक्त बात इटली के प्रातो धर्म प्रांत ने सृष्टि के मौसम की शुरुआत के पूर्व कही। 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल हेतु प्रार्थना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रार्थना दिवस की विषय वस्तु होगी ग्रह, जिसका सपना हम सभी देखते हैं। 1 सितंबर को विला दिल पालको में चिंतन, प्रार्थना, प्रवचन, भजन और कविताएं प्रस्तुत की जाएंगी। इस अवसर पर प्रातो के धर्मदर्श जवानी निर्बिने और वनस्पति शास्त्री एवं पारिस्थितिक वैज्ञानिक स्टेफानो मानकुसो भी उपस्थित होंगे। वहां एक परियोजना प्रस्तुत की जाएगी जो संत पापा फ्रांसिस के प्रेरित विश्व पत्र लौदातो सी से संबंधित होगी। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने शांति के लिए कोरियाई वैश्विक मंच को एक वीडियो संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति को बढ़ावा देने हेतु कलीसिया की भूमिका पर जोर दिया है। न्याय जब मांग करती है कि हम दूसरों के अधिकारों का हनन न करें बल्कि उन्हें उनका हिस्सा प्रदान करें। उदारता हमें दूसरों की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता के रूप में महसूस करने में मदद देती है। यह फलदायी सहयोग और मित्रता को बढ़ावा देती है, जबकि सच्ची शांति एक ऐसी दुनिया में स्थापित की जा सकती है जहां न्याय अपनी परिपूर्णता परोपकार एवं प्रेम में पाता है। उक्त बात वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने मंगलवार को शांति हेतु कोरिया वैश्विक मंच को प्रेषित एक वीडियो संदेश में कही। यह दक्षिणी कोरिया के एकीकरण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें वैज्ञानिक शोधकर्ता एवं सरकारी अधिकारी करीब 20 देशों से एकत्रित होते हैं। इस साल इसे 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित की गई है, जिसकी विषय वस्तु है अंतर कोरियाई संबंधों एवं समुदाय के लिए एक नई दृष्टि, शांति, अर्थव्यवस्था और जीवन के लिए। महामारी के कारण इसे ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। वैटिकन राज्य सचिव ने मंगलवार को कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापना हेतु कलीसिया की भूमिका पर एक लंबा दस्तावेज प्रस्तुत किया तथा कलीसियाई परम्परा एवं सुसमाचार के मूल्यों, सिद्धांतों एवं विचारों को सामने रखा जो प्रायद्वीप में शांति और मेल मिलाप लाने में मदद दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि संत पापा पॉल 6वें के अनुसार लोग एवं राष्ट्रें एक दूसरे के साथ भाई और बहन के रूप में तथा ईश्वर के संतान के रूप में मिले तथा मानव जाति के आम भविष्य का निर्माण करने के लिए एक साथ कार्य करें, ताकि एकात्मकता पर आधारित मानवता के समग्र विकास की परिस्थिति उत्पन्न की जा सके। कार्डिनल ने कहा कि इस प्रक्रिया को स्वागत करने, साथ देने एवं सुनने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कैमरून के माम्फे धर्म प्रांत के पुरोहित जूलियस का अपहरण कथित अलगाववादी लड़ाकों ने किया है। कलीसिया के धर्म गुरुओं के अनुसार अपहरणकर्ता उनकी रिहाई के लिए फिरौती की मांग कर रहे हैं। मॉन्सिनियर जूलियस माम्फे धर्म प्रांत के विकट जनरल हैं और वे कैमरून में अपहरणकर्ताओं के नवीनतम शिकार हुए हैं। माम्फे धर्म प्रांत के कुलपति फादर सेबेस्टियन सीजू ने एक बयान में कहा कि मॉन्सिनियर का अपहरण कोकोबूमा से लौटते समय हुआ, जहां वे प्रेरित दौरे और पल्ली के पुरोहितों से मुलाकात करने गए हुए थे। रविवार 29 अगस्त को जारी एक बयान में कहा गया है कि मैं बहुत भारी दिल से मॉन्सिनियर जूलियस अगबुर्तो को के आकस्मिक अपहरण की खबर लाता हूं। बयान के अनुसार मॉन्सिनियर जूलियस रविवार को शाम 6 बजे से ठीक पहले चले थे। लगभग आधे घंटे बाद कुछ युवक जिन्होंने अलगाववादी लड़ाकों के रूप में अपनी पहचान बताई मेजर सेमिनरी के परिसर में प्रवेश किया और धर्मदर्श लिसिंग के निवास की ओर बढ़े। जब उन्होंने वहां विकट जनरल को पाया, जिनको उन्होंने उनका सहायक और सेवानिवृत्त धर्मदर्श से अधिक मजबूत माना, अपहरणकर्ता इस समय फिरौती की राशि के रूप में 20 मिलियन फ्रैंक सीएफ की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।